ஓம் சாந்தி. வரதான் சப்த் ஐசா ஹை ஜிஸ்கோ ஹம் பக்தி மார்க் மே சுன்தே ஆயே ஹேன் ஔர் சதா ஹி யே இச்சா ரஹதி ஹை கி பகவான் சே வரதானோ கி ப்ராப்தி ஹோ. ஔர் யே வரதான் யஹான் பர் தோ பாபா கே பச்சே பன்னே கே பாத் தோ கித்னே வரதானோ கி ப்ராப்தி ஹோதி ஹை. ரோஜ் ஹி முரளி சுன்தே ஹேன் ஔர் பாபா கா வரதான் உஸ்மே ஆதா ஹி. ஆஜ் பி சுபே சப்னே முரளி சுனி நா, க்யா வரதான் தா பாபா கா, ஜோ பி ஹம் சேவா கர்த்தே ஹேன் வோ தீனோ பிரகார் கி சேவா ஹை, மன்ஷா வாச்சா கர்மணா சாத் சாத். ஜப் வாச்சா சே சேவா கர்த்தே ஹேன், கர்மணா சே கர்த்தே ஹேன், உஸ்கே சாத் சாத் ஹமாரி மன்ஷா பி உத்னி மகான் ஸ்திதி மே ரஹே, தோ உன் போல் கா உன் கர்மோ கா அசர் பி பஹோத் பஹோத் அதிக ஹோதா ஹை. ஔர் இசி காரண சே பாபா கேதா ஹை, சப் தீனோ பிரகார் கி யே சேவாயே சாத் சாத் சதா சல்தி ரஹே. ஔர் பாபா நே ஆஜ் கி முரளி மே க்யா பதாயா, முக்கிய க்யா பதாயா ஆஜ் பாபா நே, கௌன் சா புண்ணிய கா காம் கர்னா ஹை. ஆஜ் முரளி மே போலா நா, புண்ணிய கா காம் கௌன் சா ஹை. பாபா நே தீன் புண்ணிய கே காம் ஆஜ் கி முரளி மே விசேஷ பதாயே. கௌன் சே தீன்? பஹுத் சஹஜ ஹை, அக்சர் கர்க்கே பாபா பதாயா கர்த்தே ஹேன். ஏக் படா புண்ணிய கா காம் ஹை பாப் கோ யாத் கர்னா, ஹம் குத் யாத் கரே. தூசரா புண்ணிய கா காம் ஹை பாப் கி யாத் கரானா, குத் பி யாத் கரே, தூசரோ கோ பி பாபா கி யாத் திலாயே. ஔர் தீசரா புண்ணிய கா காம் பாபா நே க்யா பதாயா, கி ஜப் யாத் கரேங்கே யாத் கராயேங்கே உஸ் ஸ்திதி மே ரஹேங்கே, தோ தீசரா புண்ணிய கா காம் யானி பாப் கா பரிச்சய தேனா, யானி சேவா கர்னா, தோ பாப் கா பரிச்சய தேதே ரஹே. தோ யே தீன் பாபா நே புண்ணிய கே காம் ஆஜ் காஸ் பதாயே முரளி மே. தோ ஆஜ் கா விஷய பி இஸ்ஸே ஹி பஹுத் குச் லக்தா ஹை, கி வரதானோ கி அனுபூதி கர்னா. ஏக் தோ பாபா நே ஜோ வரதான் தியா உஸ்கோ காலி சுன் லியா, லேகின் உஸ் வரதான் கி அனுபூதி ஹோ, கேசி ஸ்திதி கே த்வாரா வோ கப் ஹோகி வரதானோ கி அனுபூதி, ஜப் அலர்ட் ஸ்திதி ரஹேகி, சாவதான் மன் பி ஹமாரா சாவதான், சங்கல்ப் பி ஹமாரி உசி ஸ்திதி மே சலே, தோ வரதானோ கி அனுபூதி ஹோகி. வரதானோ கி அனுபூதி கா மத்லப் க்யா ஹை? ஜெசி அலர்ட் ஸ்திதி கே த்வாரா வரதானோ கி ப்ராப்தி கா அனுபவ கர்னா, வரதான் ஹமே வாஸ்தவ மே மில் கயா. பக்தி மார்க் மே பி ஜப் பக்த் கோ வரதான் மில் ஜாதா ஹை தோ வோ க்யா அனுபவ கர்த்தா ஹை? ஜிஸ் வரதான் கி உஸ்னே காமனா ரக்கி தி, இச்சா ரக்கி தி, உஸ்கி பூர்த்தி ஹோ ஜானா, ஜோ சங்கல்ப் உஸ்கே மன் மே தா வோ சங்கல்ப் சித்த ஹோ ஜானா, वो वरदान की अनुभूति होता है। ऐसा ही होता है ना, भक्ति मार्ग में भी अनुभव करते रहे। तो यहां पर भी हम सबको भी वरदानों की अनुभूति का अनुभव होता रहे। हाँ, ये बाबा मैंने संकल्प रखा था, ये मेरा संकल्प सिद्ध हुआ, ये मेरे संकल्प पूरा हुआ। थैंक्स। जब कोई भी बात होती है हमारे अनुकूल तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स निकलता है। तो पल पल में बाबा के लिए थैंक्स निकलता रहे, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमारे ये संकल्प पूरे किए। संकल्प संगम पर और कौन से संकल्प होते हैं? कौन से संकल्प? जो आत्मा के मुख्य गुण है ना, उनकी वास्तव में अनुभूति होती रहे, प्राप्ति होती रहे, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान और शक्ति, मुख्य आत्मा की ये गुण हैं। इन सब की हमें केवल सुनने तक ही कहने तक ही सीमित न रहें, बल्कि इनकी प्राप्ति का हमें अनुभव होता रहे। तो कैसे इनकी प्राप्ति का अनुभव होगा, उसके ऊपर कुछ और चर्चा हम सब करते हैं। ये प्राप्ति हमें सदा प्राप्ति होती है, और वरदान की जब बात होती है तो कौन बीच में आता है? वरदान की प्राप्ति किससे होती है? भगवान से, प्रभु से, ईश्वर से, जिसे हम यहाँ बाबा कहते हैं, शिव बाबा से वरदानों की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में भगवान कहते आए हैं, हे भगवान मेरा ये संकल्प पूरा करो, हे भगवान मुझे ये दो, जो भी इच्छाएं होती है। तो भगवान भक्ति मार्ग में तो संकल्प पूरा करता ही आया है द्वापर युग से। भक्तों के जो बहुत नवदा भक्ति करते हैं उनको वरदानों की विशेष अनुभूति होती है, लेकिन यहाँ जब भगवान भक्तों की करता है तो यहाँ तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चों को क्या उसकी अनुभूति नहीं होगी संकल्प सिद्धि की, प्राप्ति की? तो भगवान क्योंकि उसका नाम ही है भगवान, भक्ति मार्ग में कहते आए हैं, तो भगवान भगवान शब्द का क्या अर्थ है? देखो ये शब्द भी ना, ये भगवान ये किन किन अक्षरों से बना है? भ ग व न, ये अक्षर है ना। तो एक एक शब्द का वास्तव में अपना गहरा अर्थ है, उससे वरदान मिलते हैं, प्राप्तियां होती हैं। तो और हम वरदानों की इच्छा कब करते हैं? परमधाम में तो वरदान की इच्छा नहीं करेंगे, सतयुग त्रेता में भी नहीं करेंगे, हर एक चीज की प्राप्ति है। द्वापर के बाद हमने वरदानों की इच्छा रखनी शुरू की, क्योंकि कमी होनी शुरू हुई हमारे दुखों में, सुख शांति में। दुख बढ़ते गए, सुख शांति शक्ति आनंद प्रेम पवित्रता इन सब में कमी होती गई, तो इसकी इच्छा रखनी हमने शुरू करी। तो ये सब की भी इच्छा तब होती है जब आत्मा शरीर में होती है, और जब हम शरीर में होते हैं शरीर से ही सुख दुख भोगते हैं, तो इनकी इच्छा होती है। ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, तो भगवान कहा ही उसे जाता है जो इन पांच तत्वों को वश में करके प्रकट होता है, यानी कि भ, भ यानी क्या है? भूतल। ग, ग रिप्रेजेंट करता है गगन। वो क्या है? वायु का प्रतीक। और वह के आगे डंडा जो है वो है आ, आ का डंडा होता है ना, तो अ अर्थात अग्नि सूर्य और न अर्थात नीर यानी पानी जल। तो जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश ये प्रकृति के पांच तत्व जो है इनको जो वश में प्रकट वश में करता है वो भगवान है। तो हमारा भी यही पुरुषार्थ चलता है ना, बाबा ने हम बच्चों को भी ये सिखाया है, भगवान तो उनको वश में करके प्रकट होता है, बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर के भगवान प्रकट होता है। और अभी गुलजार दादी जी के द्वारा जो बाबा व्यक्त बाप दादा मुरली चलाते हैं वो भी ये शरीर दादी जी के शरीर के द्वारा जो मुरली चलती है बस उस शरीर में प्रकट होके उसमें आता है बाबा और फिर ज्ञान सुनाता है। तो ये पांच तत्वों को भी, पांच तत्वों से बना हमारा शरीर, इसका ऊपर हमारा भी जितना जितना इन कर्मेंद्रियों के ऊपर, इन पांच तत्वों से बने शरीर के ऊपर भी हमारा आत्मा का जितना जितना नियंत्रण होता जाता है, पूरा हमारे वश में ये तत्व होते जाते हैं, उतना उतना हम भी भगवान यानी कि उसका दूसरा अर्थ है भाग्यवान यानी कि देवी देवता सदृश। लक्ष्मी नारायण भी भाग्यवान आत्माएं है ना, देखो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, भाग्यवान आत्माएं हैं, उस समान हम बनते चले जाते हैं। इसलिए वरदानों की अनुभूति अगर हमें करनी है तो एक बात तो ये है कि ये जो पांच तत्व से बना हमारा शरीर है ये कर्मेंद्रियां हैं, और ये तो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं लेकिन ये भी किसके वश में है, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के, ये आंख नाक कान आत्मो ये स्थूल कर्मेंद्रियां शरीर की, और ये हमारे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन सी, मन बुद्धि संस्कार, उन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ही वश में ये हमारी स्थूल कर्मेंद्रिय होती है। जब मन में कोई संकल्प होता है अच्छा बुरा कोई भी, उसी के अनुसार फिर वाणी भी निकलती है, उसके अनुसार कर्म होते हैं, मन संकल्प करता है बुद्धि निर्णय देती है और फिर कर्मों के द्वारा इन स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा हमारी क्रियाएं चलती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि इन वरदानों की अनुभूति हो और हम ऐसे देवी देवता सदृश बनते जाएं तो उसके लिए एक तो अलर्ट स्थिति जो आज का विषय भी है, अलर्ट माने सावधान, ऐसी स्थिति में सदा हमें रहना पड़े जो बिल्कुल जिसमें माया का सूक्ष्म भी वार ना हो सके, कमी कमजोरियों का विकारों का सूक्ष्म, ऐसी अलर्ट सावधान स्थिति। अब मिलिट्री में भी या वैसे भी जब ड्रिल करते हैं एक्सरसाइज परेड करते हैं तो हमेशा तो कोई अलर्ट होता नहीं, सावधान होता नहीं, मिलिट्री में भी बस कहते हैं सावधान फिर आराम यानी थोड़ी देर के बाद फिर रिलैक्स स्थिति, फिर सावधान एकदम अटेंशन में आ जाते हैं फिर थोड़े समय के बाद रिलैक्स, तभी हो सकता है 24 घंटे तो एकदम ऐसी अलर्ट स्थिति में कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन ये है मन के अलर्ट की बात। तो इसीलिए अलर्ट स्थिति भी हमें चाहते हैं अगर, तो अलर्ट के साथ साथ हमें रिलैक्स, अलर्ट एंड रिलैक्स उसका बैलेंस रखना पड़े। एकदम सदा अलर्ट रहेंगे बिल्कुल तो मन में टेंशन भी आने की संभावना है, तनाव पैदा होगा, अलर्ट स्थिति में पूरा बिल्कुल एक्शन में करने की स्थिति में रहते हैं तो अलर्ट के साथ साथ रिलैक्स स्थिति, इन दोनों का बैलेंस ये जीवन में। तो जैसे इसका बैलेंस है, ऐसा अब सारे दिन भर यह मन की बात अलर्ट एंड रिलैक्स, और सारे दिन भर जब हम कार्य व्यवहार में हैं तो कौन सी स्थिति, वो बाबा ने दूसरी एक स्थिति और बताई है, बिजी और इजी रहने की स्थिति। हम बिजी भी रहें लेकिन बिजी के साथ साथ इजी रहें। और बिजी कर्म में तो व्यवहार में तो बिजी रहना ही है, व्यस्त, लेकिन मन से बिल्कुल सहज, लाइट, हल्के, इजी रहे। तो जितनी बिजी स्थिति होगी उतनी इजी भी होगी, अलर्ट होंगे, अलर्ट के साथ साथ रिलैक्स भी एंजॉय करेंगे, और साथ साथ बाबा ने और भी जीवन के बैलेंस बताए हैं। कौन सा बैलेंस है और जीवन का, एक है चीयरफुल एंड केयरफुल। चीयरफुल माने बिल्कुल खुशी की स्थिति, हल्केपन की, लेकिन साथ साथ केयरफुल भी रहे, सावधान भी रहे, जिससे हल्केपन में हमारे से हल्की बात ना निकल जाए, हल्का ही कोई कर्म ना हो जाए जिससे कोई भी कर्म बने, वो भी सावधान केयरफुल भी रहे और चीयरफुल भी रहे। और ये कब होगा, जितना जितना हम डिटैच और इन्वॉल्व स्थिति में रहे। बाबा ने आज भी कहा ना, डिटैच शरीर से भी न्यारेपन की स्थिति, डिटैच भी रहे लेकिन साथ साथ न्यारेपन की स्थिति। तो ये जो दो दो देखने में विपरीत बातें लगती हैं, कई सारी हैं ऐसी, इन दोनों को कार्य व्यवहार के समय ये स्थिति, जब थोड़ा फ्री हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, उसमें ये स्थिति, ऐसी ऐसी स्थितियों का जब जीवन में बैलेंस रहता है तो बहुत सहज ही हम मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और ये स्थिति हम दादियों में आजकल बहुत देखते हैं, वरिष्ठ भाइयों में, बहनों में, दादियों में, कि बस बोल भी रहे हैं लेकिन जैसे इस शरीर में नहीं है, दादियों को देखो जैसे न्यारेपन की स्थिति से बोल रही हैं, कर्म कर रहे हैं, शरीर से एकदम न्यारापन, हल्कापन की स्थिति लगे। तो ये जितना जितना होता रहता है तो हम हल्के होते चले जाते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा है क्या, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। अब ये कैसे हो सकता है, कर्म तो होता ही तब है जब पहले फल की इच्छा हो। आपने यहां तक हॉल तक आने का कष्ट किया, क्यों, क्योंकि ये फल दिमाग में था, यहां क्लासेस होती है, यहां ये क्लास मिलेगी, तो फल की इच्छा तो माइंड में होती है लेकिन कर्म उसके अनुसार करना है। फल की इच्छा ना करें ये तो होता नहीं। इसका भाव क्या है कि जब हम कर्म करें उस समय पूरा का पूरा हमारा इन्वॉल्वमेंट हो, मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, यानी कि जैसे अभी क्लास अभी सुन रहे हैं आप, तो इस समय फुल इन्वॉल्वमेंट हो, केवल शरीर से यहां ना बैठे लेकिन मन से भी यहां बैठे हैं। ऐसा ना हो शरीर यहां बैठा रहे, मन कहीं और भागता रहे, ऐसा नहीं। फुल इन्वॉल्वमेंट यानी कि मन से भी, वाणी से भी, कर्म से भी, बुद्धि से भी, पूरे के पूरे यहां कर्म करें, लेकिन साथ साथ और क्या, जब आप कोई भी कर्म करते हैं, मानो आपने कर्म किया, हाँ रिजर्वेशन कराने गए तत्काल का, नहीं मिल सका मानो, तो कर्म तो आपने पूरी मेहनत करी अपनी तरफ से, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, लेकिन फल अगर हमारी इच्छा के अनुरूप न हो तो इमोशनल डिटैचमेंट यानी भावनात्मक रूप से ना हम उस फल से डिटैच हो जाए, तो क्या होगा, उसका दुख का फल मन का संकल्प पूरा होने का हमें कष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए कर्म करें उस वक्त पूरी की पूरी हम मेहनत करें, लेकिन जब फल का नंबर आए उस समय हम डिटैचपन की स्थिति का अनुभव करें। ये वास्तव में जो है मन की स्थिति, अलर्ट स्थिति के द्वारा, जैसे इससे क्या होगा कि हमें पल पल पर वरदान की अनुभूति होती रहेगी। बाबा ने कहा है जैसे जीवन व्यवहार के संतुष्टता का गुण, अब मानो ये मेरे इच्छा पूरी नहीं हुई जो मैं कर्म की इच्छा कर रहा था, कर्म मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी लेकिन फल मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं आया, तो क्या होगा, उससे मुझे दुख असंतुष्टता का भाव नहीं होगा, उसमें भी मुझे संतुष्टता का ड्रामेपन का ज्ञान रहेगा और मन की स्थिति डावाडोल नहीं होगी। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने भी ना बड़े बड़े सिद्धांत दिए हैं, बहुत सहज। हाँ, क्या सिद्धांत दिए हैं भारतीय संस्कृति ने, एक तो सिद्धांत दिया है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्धांत है, वो कौन सा है, जियो और जीने दो। ये व्यवहारिक सिद्धांत, जियो और जीने दो। हमें दुख की असंतुष्टता की महसूसता ही तब होती है जब हम दूसरों को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं। हम खुद तो जीना चाहते हैं लेकिन दूसरे को भी जीने का अधिकार वो पूरा नहीं, और इसी कारण से घर घर में सास बहू का, बाप बेटे का, भाई भाई का, मन के विचारों का अंतर होता जाता है, और उसमें जब एक दूसरे को अपनी इच्छा से चलाना चाहता है और सारी दुनिया तो हमारे अनुरूप नहीं चलती, तो ये कष्ट का अनुभव विशेष होता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि जीवन में सदा हमें सुख शांति की अनुभूति होती रहे, वरदान में तो मिलता ही सुख शांति आनंद आदि है, कोई भी दुख का वरदान तो मांगेगा नहीं, सुख शांति का ही वरदान मांगता है, जीवन में जिससे आनंद मिले, जीवन से कष्ट दूर हो जाए, यही तो वरदान है, यही तो भगवान से प्राप्ति होती है। तो इस कारण से उसके लिए हमें पहला एक कदम ये लेना पड़ेगा अपने व्यवहारिक रीति से कि जियो और जीने दो। हम मानो दूसरे को किसी को कोई बात कहनी है कह दिया, अब उसने अगर नहीं किया ना तो उसके ऊपर हमारे व्यर्थ संकल्प न चले, हमारे अंदर बहुत कष्ट की अनुभूति ना हो, ये देखो मैंने कहा इसने मेरी बात नहीं मानी, नहीं उस वक्त करते वक्त बोलते वक्त अथॉरिटी से बोले लेकिन साथ साथ जब उसका कोई रिजल्ट आता है तो उसमें हम ड्रामा के पट्टे पर खड़े हो जाएं। उससे क्या होगा कि वो परिस्थिति अनुकूल नहीं भी हुई लेकिन हमें फिर भी ये वो होगा, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमें वरदान की अनुभूति होती रहेगी, क्यों, संतुष्टता भी तो एक वरदान है, उस स्थिति में भी हमारे अंदर संतुष्टता का भाव होगा। और इसीलिए आज के वरदान में भी बाबा ने जो कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से सेवा करते चलो। तो जब किसी को बोले कोई भी बात, कर्म की भी बात हो लेकिन साथ साथ मन में अगर उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हुई, उसके प्रति ऐसा हमारी ये भावना नहीं हुई मैं बड़ा हूं ये छोटा, इसे मेरी बात माननी चाहिए, ऑर्डर के रूप में अगर हुई तो वो बात पूरी नहीं होगी तो कष्ट होगा, लेकिन अगर ऐसा प्रेम का, स्नेह का, शक्ति का भाव रहेगा तो जो मुंह से बोल निकलेंगे, जो कहा जाएगा, साथ साथ मन से उसे वो शक्ति का ट्रांसफर भी किया जाएगा, दान भी दिया जाएगा, तो क्या होगा, वो जो हमने बोला है वो सफल भी होगा, वो कार्य दूसरा करेगा भी, अवश्य करेगा। लेकिन जब एक ऐसी बात हम उस रीति से चलाते हैं जिसमें कोई अहंकार की, बड़प्पन की कुछ बू होती है, तो दूसरा भी, उसका भी ईगो हर्ट होता है, अहम को ठेस पहुंचती है और वो कई बार बात नहीं हो पाती। एक हाँ जियो और जीने दो का सिद्धांत, और दूसरा एक सिद्धांत है जो भी भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा दिया है। हाँ हमेशा ही हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है, पूरी सृष्टि ही हमारी परिवार है। ये हमारा परिवार में क्या होता है, परिवार में वसुधैव कुटुंबकम में क्या होती है भावना, भाई परिवार के लिए हरेक मंगल कामना करता है, परिवार का एक एक सदस्य शांति में रहे, आनंद में रहे, सुख में रहे। इसीलिए तो परिवार का बड़ा जो होता है कमाता है, परिवार के लिए सुख साधन इकट्ठा करता है, परिवार के सब सदस्य एक दूसरे के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। परिवार के अंदर प्रेम जहां होता है वहां सब कुछ बड़ा सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण से वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में रहे, और वसुधा ही हमारा परिवार है, पूरी सृष्टि ही हमारा परिवार है। और इस सृष्टि में तो सभी आ जाते हैं, जहां एक तरफ सृष्टि में मनुष्य जाति आती है, मनुष्य के साथ साथ दूसरे हैं, पूरा पशु पक्षी जीव जंतु वो भी मनुष्य सृष्टि का ही एक अंग है, वो भी आ जाते हैं। और साथ ही साथ ये पांच तत्व जो हैं प्रकृति के, ये भी एक मनुष्य वसुधा पृथ्वी के ऊपर, ये भी पांच तत्व ये भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस कारण से ये सब जो हैं मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी इन सब के प्रति हमारी शुभ भावना शुभ कामना, क्योंकि जब भी हमारी शुभ भावना शुभ कामना पूर्ण रीति से नहीं रहती है तो वो भी किसी न किसी सूक्ष्म रीति से बदले की कामना करते हैं। मानो अभी संसार में ना सबसे बड़ी से बड़ी समस्या अभी कौन सी है, वैज्ञानिक भी कहते हैं ये जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज जिसे कहा जाता है, मौसम परिवर्तन ये संसार की सबसे बड़ी समस्या है। कभी ठंडी के वक्त गर्मी हो जाती है, कभी गर्मी के वक्त सर्दी हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि दूसरी जगह होती है, पानी नहीं बरसता सूखा पड़ जाता है। ये पांच तत्व भी अपने चरम सीमा लांघते जा रहे हैं, कष्ट देते जा रहे हैं, क्योंकि इन तत्वों को भी हमने भी कष्ट दिया है, तो इस कारण से पृथ्वी का कितना दोहन किया है, पेड़ पौधे जंगल काट डाले, पशु पक्षी जीव जंतु कितनी प्रजातियों को मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए भोजन के लिए नष्ट कर दिया है, बहुत प्रजातियां नष्ट हो गई है। तो हम सब ने अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने इन सब को का दोहन किया है, तो आज प्रकृति भी मनुष्य का दोहन कर रही है, नष्ट कर रही है। सूक्ष्म में ये कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, भूचाल आ जाता है, कहीं पर नदियों में बाढ़ आ जाती है तो कहीं एकदम सूखा पड़ जाता है, कहीं पर सुनामी आ जाती है और कहीं पर एकदम ऐसा सूखा, बस मनुष्य सूखे से ही मर जाते हैं, फसल सारी की सारी नष्ट हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। तो ये जितनी भी चीजें हैं अब इस समय हर मनुष्य को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। हमने तो अपने अंदर झांका, देखा, समझा जो बाबा ने बताया, हाँ वास्तव में हम विकारी बन गए हैं, अभी बाबा के ज्ञान देर योग से हमें निर्विकारी बनाया है। लेकिन फिर भी ये झांक के भी ना कई बार क्या होता है, हम अपने अंदर पूरा नहीं देख पाते, बीच बीच में हम ये बात को भूल जाते हैं, बस यही भूल करते रहते हैं। हाँ। किसी ने कहा है, बिल्कुल इस रेफरेंस में ठीक ही कहा है कि जिंदगी भर, हाँ, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। सुना होगा शायद आपने कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, कौन सी भूल? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना, अब चेहरे पर धूल है, समस्या हमारी है, लेकिन हमने सोचा आईना, यानी कि दूसरे को हम दोष देते रहते हैं। कोई भी बात होती है, उसने ऐसा किया, उसने ये बोला तो मुझे क्रोध आया। अरे क्रोध करना ना करना तो मेरे हाथ में, लेकिन हम दूसरे को दोष देते, उसने ऐसा कहा ऐसा किया तो मुझे क्रोध आ गया। तो इसीलिए दूसरे को दोष न दे करके किसी भी परिस्थिति में अब हम अपने अंदर ही बार बार जो बाबा कहता है अपने अंदर ही झांकते रहें, अपने अंदर ही देखते रहें और आगे बढ़ते चले। एक ये बात है। और दूसरे को दोष कब नहीं देंगे हम? दूसरे अब कमियां तो सब में है, कोई ना कोई बात, कई बातें हमारी इच्छा के अनुरूप होंगी, कई नहीं होंगी। तो इसीलिए कई ऐसे होंगे जो वास्तव में जिनके किसी कार्य के कारण हमें क्रोध आने की संभावना है, हमें ऐसी स्थिति कि हम अपना आपा खो दें, कई बातें होंगी। तो दूसरी बात यह आवश्यक है जिंदगी में, जितने भी महान पुरुष भी होके गए हैं ना, उन महान पुरुषों में एक बात विशेष थी, कौन सी? एक शक्ति, क्षमा करने की शक्ति। जो भी महान आत्माएं हुई हैं, चाहे भाई महात्मा गांधी हो, चाहे मदर टेरेसा हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, हमने ब्रह्मा बाबा को भी देखा, इतना दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, हमारी दादियां जो जानकी दादी गुलजार, क्षमा करने की शक्ति इनमें विशेष है। और इस कारण से सबसे बड़ी प्राप्ति इन्हें कौन सी रहती है? सदा किसी ने कोई आया, भूल करी, क्षमा कर दिया, उस बात को भूल गए, तो क्या होती है उस व्यक्ति के प्रति ना, इनके मन में कभी भी कोई खराब ख्याल, गलत ख्याल ऐसा नहीं उठता। हर व्यक्ति को उसी महान नजरों से ये आत्माएं देखती रही हैं, जो भी महान आत्माएं बस रही हैं। और हमारा भी सफर, अगर हम किसी को माफ कर देते हैं ना, किसी की गलती देखी, किसी ने हमारा अपमान किया, कोई बात हुई, ये बात में हम अलर्ट रहते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली ना क्या होगा, खुशी की, शांति की, आनंद की प्राप्ति होगी। यही वरदान है भगवान का। बड़ा अच्छा कहा है, सुना भी होगा आपने, हमारा ये जिंदगी है ना, ये भी एक सफर है, तो इसको हम कई बार अपने ही कर्तव्यों से मुश्किल कर लेते हैं, अपने ही कर्तव्यों से सहज कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया। कैसे आसान हो जाएगा? जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। जिंदगी में कोई बात हमारी किसी की हम दिल में न रख लें, माफी देते चलें, उससे क्या हम खुद बहुत हल्के रहेंगे, और खुद बहुत हल्के रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और वो ही हमें खुशी, आनंद, शक्ति की प्राप्ति होती चलेगी। यही हमारे लिए वरदान है, और कोई भक्ति मार्ग की तरह वरदान नहीं। हम बस योग में बैठ जाएं और भगवान से मांगे और ये भगवान का साक्षात्कार हो, शिव बाबा का साक्षात्कार भी हुआ तो क्या होगा, बिंदी पहचान भी नहीं पाएंगे। तो बाबा कहता है अपने कर्तव्यों से ही हम अपने लिए वरदान लेते चले। और वो एक ये कर्तव्य भी है कि व्यवहार में जब आए, किसी का कोई भी अकर्तव्य देखा, कोई ऐसी बात देखी, उसको क्षमा करते चले, उसकी भूल को माफ करते चले। वो तब होगा जब हम उसकी उस गलती को भूल जाएंगे और इस तरह हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए और बहुत सहज हो जाएगा। हम प्रतिपल, कोई एक दो वरदान की बात नहीं है, भक्ति में तो आता है उसने इतने 100 वर्ष तक, इतने वर्षों तक तपस्या की तो एक बार तो बस भगवान खुश हुए, दर्शन दिया और उसे दर्शन दे करके उसको उसके मन की इच्छा को पूर्ण किया, वरदान दे दिया। लेकिन अभी ये आवश्यकता है ये वरदान की कि हम कोई एक दो वरदान नहीं, बस रोज की रोज हम भगवान से वरदान प्राप्त करते चलें, बाबा से वरदान लेते चलें, उसकी अनुभूति करते चलें, तो कितने वरदानों का ढेर, कितने शक्तियां हमारे पास इकट्ठी हो जाए। तो अभी आवश्यकता यह है हम वरदानों को केवल मुरली में ही जो वरदान आता है वो न सुने, लेकिन ये सब अपने कर्तव्यों से पूरे दिन की दिनचर्या से वरदानों को इकट्ठा करते चले। इससे क्या होगा, जीवन के अंदर ना कई बार कोई समस्या आती है, वो समस्या को हम सहज ही रीति से पार कर सकते हैं। कोई भी कमी कमजोरी है, किसी को देखते हैं, और इसीलिए इसके लिए एक बहुत अच्छा बाबा ने कहा है, हा? बस जिंदगी में ना योगी की भी अवस्था गीता में क्या कहा है, योगी कैसा होता है, योगी की स्थिति का वर्णन किया है। ज्ञानी योगी जो सच्चा होगा उसकी कैसी स्थिति होगी, मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत हानि लाभ दुख सुख सब में उसकी मानसिक स्थिति समान हो। ऐसा नहीं कि सुख आया बहुत खुश हो गया और दुख आया एकदम रॉक बॉटम जमीन में चला गया, बिल्कुल ही डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ऐसी स्थिति नहीं है। ये तो दिन रात की तरह है, मौसम की तरह है, इनका प्रकृति का नियम ही है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, मौसम भी परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, इसीलिए हमारी मानसिक स्थिति सब में समान रहे। वो कब रहेगी, जो बाबा कहता है ना, हर परिस्थिति में खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कैसे मुस्कुराएंगे हर परिस्थिति में, कहना तो बड़ा सहज है, कोई बात हुई हमारे विपरीत हो गई उसमें मुस्कुराहट कहां से होगी। लेकिन बाहर की मुस्कुराहट नहीं, ये मन की बात है, जब मन वाणी कर्म ड्रामा की पट्टी पर साथ साथ चलते रहेंगे। जब खुशी की बात होती है तो हम क्या करते हैं, फूल होते हैं ना, फूल से किसी का स्वागत करते हैं, फूल डालते हैं ऊपर, फूल से दिया किसी को, तो बस ये भी एक खुशी का प्रतीक है, लेना देना फूल का। इसके लिए भी बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, फूल के लिए भी है, कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। फूल, खुला हुआ फूल कितना अच्छा लगता है और खुशी का प्रतीक है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। गम तो जीवन में आएगा, दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति ये सब होंगी, लेकिन जो भी नेगेटिव चीज है, गम है, दुख है, अपमान है, उसको हम बस ड्रामा के पट्टे पर खड़े होके भूलते चले। तो फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में ये विपरीत परिस्थितियां आएंगी, हम बाबा के बन गए ये ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो बाबा, और कई बार पहले बाबा की मुरली में आता था, हमने कई बार सुना है, मैं तो और कहता हूँ, बच्चे कई बार कहते हैं बाबा माया को ना भेजो हमारे पास, तो बाबा कहता है नहीं, मैं तो माया बच्ची को बोलता हूँ, जाओ और अच्छी रीति से बच्चे की परीक्षा लो, देखो कितना पक्का बना है। तो बाबा कोई भेजता नहीं है, लेकिन कोई भी, ये तो जीवन का नियम है, परिस्थितियां बदलती हैं, वो परिस्थितियां कभी अनुरूप होती हैं, कभी विपरीत होती हैं। इसीलिए उस अनुरूप और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी मानसिक स्थिति खुशनुमा रहे, समान रहे, उस विपरीत परिस्थिति में भी हमें जीतने का अनुभव हो, हारने का अनुभव ना हो। तो ऐसा जब होगा ना, तो हम खुशनुमा होकर के जीवन में आगे चलते रहेंगे। और ये कब होगा जीवन में? जब प्रतिदिन हमारा एक अभ्यास पक्का रहेगा, जैसे और अभ्यास की बात हमने करी, भाई अलर्ट के साथ रिलैक्स भी हो, साथ साथ ना बिजी रहें, लेकिन इजी, शरीर से बिजी रहें लेकिन मन से इजी रहें। इसी तरह एक और है जो बाबा कई बार कहता है, एक दो दिन पहले वरदान में और स्लोगन में भी आया था, क्या था? अंतर्मुक्त स्पीच और साइलेंस का भी बैलेंस हो जीवन। स्पीच यानी कि कितना हम मुख से बात करते हैं और कितना समय हम अपने प्रति देते हैं, साइलेंस में हम शांति में गहरे उतर जाए। तो जहां पर जब स्पीच और साइलेंस का बैलेंस रहेगा, तो अंदर ये शक्ति इकट्ठी होती जाएगी, और जहां पर ये साइलेंस की शक्ति इकट्ठी होती जाएगी अंदर ही अंदर, तो कभी परिस्थिति आती है ऐसी ही, तो हम उस शक्ति को, उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस होता है, बैंक में भी अगर पैसे का बैलेंस होता है, हम कहते हैं भाई इतना बैलेंस है, तो बैंक में अगर बैलेंस होता है तो कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम उस बैलेंस से पैसा निकाल करके अपना काम चला लेते हैं, उस विपरीत परिस्थिति को पार कर लेते हैं। ऐसे ही जो ये साइलेंस स्पीच के साथ, सारा दिन बोलते रहते हैं, बोलने में भी शक्ति खर्च होती है, इकट्ठी नहीं होती। तो जब साइलेंस है, एकांत है, अंतर्मुक्ता है, शांति है, उस स्थिति में हम अपने अंदर शांति की, साइलेंस की शक्ति इकट्ठे जब करते जाते हैं, तो समय, विपरीत समय आने पर कहीं कोई ऐसी समस्या आ गई, जब हमें अंतर्मुखी होकर बैठ के सोचने की आवश्यकता है, उस समय इस शक्ति को हम विड्रॉ कर लेते हैं। इसीलिए बाबा ने ये सब चीजों का बैलेंस की शक्ति हमें दी है, कि इन सब चीजों का जीवन में बैलेंस रख के चलते रहो, और जितना जितना इसके साथ साथ बैलेंस होता रहेगा। परिवार में एक और समस्या आती है जो बाबा ने कई बार कहा है, कौन सी समस्या, कौन सा बैलेंस, अक्सर करके कई बार मुरलियों में भी आया है बाबा की, कौन सा जीवन व्यवहार में एक बैलेंस है? लव और लॉ का बैलेंस, यानी कि जीवन के जो व्यवहार है, कानून है, लॉ, जो हम समझते हैं ये मर्यादा है, ये होना चाहिए, ये कानून ऐसा करना चाहिए, लॉ भी बुद्धि में हो लेकिन साथ साथ लव का भी बैलेंस, लव प्यार। कोई भी बात देखो, बाबा कितनी बड़ी बड़ी बात बोल देता है, कितना बड़ा टारगेट भी दे देता है, लेकिन कितने प्यार से बाबा समझाता है, और वो प्यार से वो बड़ी बात भी हमें फिर भारी नहीं लगती, हम बिल्कुल उस बड़ी बात को भी बड़े हल्केपन से, सहज रीति से बड़ी बात को भी हल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लव एंड लॉ, हमें याद है बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी थे, तो बस उनके पहले बोलते रहे वो लव एंड लॉ का बैलेंस। तो कई बार बहनें आती थी, दादी ये कैसे रखें, किसी ने मानो कोई है उसने ऐसा उल्टा काम कर दिया तो कायदे के तो विपरीत है, लॉ के तो विपरीत है, उसे बताएंगे और वो बिगड़ जाता है कई बार, तो लव का बैलेंस कैसे रहे। तो दादी जी कहते थे ये लव एंड लॉ का बैलेंस भी ये एक पुरानी बात हो गई, अभी नया स्लोगन दादी जी ने दिया था, कौन सा? लव इज लॉ, लव ही लॉ है। प्रेम से अगर हम किसी को भी आगे बढ़ाते चलते हैं और उसका गलती को हम, होता क्या किसी से कोई गलती होती है ना, तो हम कई बार आपे में आके उसकी गलती को बार बार उसे रिमाइंड कराते हैं, देखो तुमने ये किया ये किया, इससे उसका अभिमान को भी ठेस लगती है और वो भी जिसे कई शब्दों में ढीठ होता जाता है, बार बार वो गलती रिपीट होती रहती है। तो इसके लिए लव इज लॉ, ये अगर हम नियम अपने जीवन का बना लेते हैं, इसके प्रति हम अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, साथ में रहने वाले छोटे बड़े कोई गलती होगी उनसे, लेकिन हमारा दिल इतना महान हो ना, लव इज लॉ, बस प्रेम से, बस उसे इतना प्रेम से कहें। कई बार इसीलिए दादियों के सामने, बाबा के सामने भी जब हम लोग जाते थे, कई बार तो बाबा को कहने की, दादियों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो व्यक्ति खुद ही एक गिल्टी कॉन्शियस होके खुद अपनी कमी बयान कर देता था और खुद माफी मांग लेता था और खुद कहता था दादी अब आगे से मैं, मेरे से ये गलती नहीं होगी, मैं बहुत बहुत सावधान रहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके प्रति हमें अलर्ट, ये ही अलर्ट स्थिति है हमारे जीवन व्यवहार में ना, ये जितनी जितनी अलर्ट स्थिति आती जाएगी तो, और कोई बाबा आके ऊपर से कोई वरदान का हाथ या तथास्तु ऐसा कहता नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्मों से ही, अपनी अलर्ट स्थिति से ही ऐसा जीवन में अनुभव होता चला जाता है कि पल पल पर बाबा हमें हमारी झोली वरदानों से भरता चला जा रहा है, हमारी झोली भरती चली जा रही है, हम अपनी मंजिल की तरफ सहज रीति से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है, ये देखने की है, और वरदान लेने का आधार ही है सावधान मन से, हम इतने सावधान अलर्ट स्थिति हमारी रहे, अपने ऊपर इतना अटेंशन रहे, हमारे मन वाणी कर्म पर इतना सावधानी रहे कि बस जो भी आत्मा है वो हमसे कुछ लेकर के भरपूर होकर ही जाए, ऐसा उसे हमारे प्रति कोई नेगेटिव भावना ना आए कि ये तो ऐसे हैं, क्रोध करते हैं, इनसे तो बात नहीं करना अच्छा नहीं है। हमें अपना वो यहां पर जब आत्माएं, चाहे परिवार में हो, लौकिक में हो, अलौकिक में हो, जब हमें वो यहां पर अपना बड़ा मानेंगी, हमारे प्रति रिगार्ड होगा, हमें अपना यहां इष्ट देव इष्ट देवी मानेंगी, तो फिर द्वापर युग से भी ना वो हमारी मूर्तियां बना के मंदिरों में रख के वो हमारी पूजा करेंगी, वही हम उनके सच्चे अर्थों में इष्ट देव इष्ट देवी बन जाएंगे। तो अभी उनके दिल में स्थान बनाने की जरूरत है, सर्वात्माओं के जो भी हमारे व्यवहार में आए, परिचय में आए, और जितना जितना ये स्थिति बनती जाती है, बस यही भगवान की वरदान देने की स्थिति है। इसीलिए सारे दिन भर में तो हम जो भी हमारा कार्य व्यवहार हो वो ऐसी स्थिति के साथ, अलर्ट स्थिति के साथ। तो अभी हमें अपनी इस स्थिति को बहुत मजबूत करना है, पक्का करना है, अपने ऊपर निगाह रखनी है पूरी, अपने केवल कर्मों के ऊपर ही नहीं, जैसा भी हमारा अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन रहता है, वाणी के ऊपर भी अटेंशन रहता है, ऐसा ऐसा अपने विचारों के ऊपर, संकल्पों के ऊपर अटेंशन रहे, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, ये कौन सा समय चल रहा है? ये समय चल रहा है संकल्प सिद्धि का समय, साधारण समय नहीं है, संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है। हम जो भी संकल्प करते हैं वो हमारा संकल्प सिद्ध हो जाता है, ये हमें पता नहीं चलता। किसी के प्रति हमने बहुत अच्छे संकल्प रखे वो भी सिद्ध हो जाएंगे, अपने प्रति हो किसी दूसरे के प्रति हो कोई भी संकल्प, और लेकिन किसी के प्रति थोड़ी भी दुर्भावना रही, कोई भी कमजोर संकल्प रहा, वो भी सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए अभी आवश्यकता क्या है? संकल्प सिद्धि का समय जो चल रहा है, बाबा ने कहा है अपने संकल्पों पर देखना कि मैं बहुत इस स्वाभिमान में रहे, मैं बहुत महान आत्मा हूं। केवल इतना ही नहीं, ऐसा एक कौन सा संकल्प है जिस संकल्प के अंदर सारे संकल्प आ जाते हैं, मैं महान आत्मा हूं, विश्व कल्याणी आत्मा हूं, मैं भाग्यवान आत्मा हूं, ये सब संकल्प उस एक संकल्प में आ जाएं। कौन सा संकल्प? वो संकल्प है सदा हम एक संकल्प रखें, मैं विजयी आत्मा हूं। कल्प पहले की, मैं विजयी आत्मा हूं। बाबा आपने कल्प पहले भी मुझे विजयी बनाया था, अभी भी मुझे विजयी बना रहे हो, और कल्प कल्प आप मुझे इसी प्रकार से विजयी बनाते रहोगे। बाबा आपका बहुत बहुत थैंक्स। ये विजयपन की बात ना, ये ही बाबा कहते अनहद नाद मन में गूंजता रहे, और जितना ये ही अपने विजयीपन का नाम बाबा, बाबा के प्रति थैंक्स, बाबा के प्रति आदर, वो भाव निकलता रहेगा उतना उतना हम विजयी बनते जाएंगे। और जितना विजयीपन का स्मृति रहेगी तो रोज अमृत वेले उठ के हम सबसे पहले एक ये संकल्प अवश्य करें, बाबा मैं विजयी आत्मा, कल्प पहले कि मैं माला का मणका, आपने मुझे कल्प पहले भी विजयी बनाया था, अभी भी आप विजयी बना रहे हो बाबा, और आपके द्वारा मैं इसी प्रकार से विजयी बनती चली जाऊंगी। तो बस ये विजय का अगर संकल्प सदा रहता है तो हमारी वृत्ति के अंदर जो संकल्प से भी सूक्ष्म चीज है वृत्ति, सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर ये बीज पूरा रोपा जाता है, घुस जाता है, फिर धीरे धीरे हमारी वृत्ति के अंदर जब ये आ जाएगा मैं विजयी आत्मा हूँ, संकल्पों में भी विजयी का रहेगा, वाणी में भी विजय की भाषा निकलेगी, कर्मों में भी विजयी आत्मा का स्वरूप होगा, सब कुछ विजयी 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 होता चला जाएगा, और हम जो बाबा की इच्छा है उन्हें पूर्ण करते चले जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।